कृष्ण। महाभारत के इस कक्षाओं में अब तक चर्चा कर चुके हैं कि कैसे पांडव वारणावत से बचकर निकल गए और फिर एक चक्र गांव में वहां पर रहने लगे, कैसे बकासुर का वध किया भीम ने। ये चर्चा पिछली बार हम लोग कर चुके हैं और अब पांडव जा रहे हैं पांचाल देश की ओर। उन्होंने सुना पांचाली के विषय में, द्रौपदी के विषय में और उसके स्वयंवर के विषय में, तो अब वे पांचाल की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से कथा को प्रारंभ करेंगे और आज द्रौपदी के स्वयंवर की चर्चा होगी। वैसे द्रौपदी का विवाह एक विवादित विषय है। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पहले कभी ऐसा हुआ हो। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं कि जहां एक राजा ने, ये जरा बच्चे को थोड़ा संभालिएगा जिनका है उसके पास रखें, नहीं तो सबका ध्यान बच्चे पर होता है, कथा पर ध्यान नहीं होता। तो द्रौपदी के विवाह के विषय में लोग कहते हैं कि ऐसे इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है कि एक स्त्री ने कई पुरुषों से विवाह किया हो। वैसे तो एक राजा ने कई पत्नियां रखी हो, ऐसे तो कई प्रमाण हैं और इसकी शास्त्र में अनुमति भी है, लेकिन एक स्त्री ने कई पति रखे हों या कई पुरुषों से विवाह किया हो, प्रामाणिक धार्मिक रीति से, तो ऐसा कोई प्रमाण शास्त्र में नहीं मिलता, ऐसा वे लोग कहते हैं। ये एक विवाद है। दूसरा विवाद द्रौपदी के विवाह के संदर्भ में है कि द्रौपदी को जब सती स्त्रियों की बातें आती हैं तो द्रौपदी का भी नाम लिया जाता है। सती स्त्रियों में जैसे हम अनुसूया देवी का नाम लेते हैं या अन्य स्त्रियों का नाम लेते हैं जो महान सती कहलाती हैं, तो उनमें द्रौपदी का भी नाम आता है। तो ये भी एक विवाद का विषय है कि कैसे द्रौपदी जब पांच पतियों से विवाह कर चुकी हैं तो कैसे सती कहलाई जा सकती हैं। और साथ ही साथ द्रौपदी के इतिहास का भी वर्णन आता है। तो ये सारे वर्णनों को आज प्रयास करेंगे करने का, कैसे इस विवाद को समाप्त किया जा सकता है, इसका वर्णन आज करेंगे। द्रौपदी के स्वयंवर की चर्चा करते हुए, तो द्रौपदी के स्वयंवर की ओर सारे ब्राह्मणों के साथ पांडव भी जा रहे हैं। और जैसे हम लोगों ने पिछली बार सुना था कि चित्ररथ नाम के गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उनको पराजित किया अर्जुन ने, तो चित्ररथ से एक प्रश्न किया अर्जुन ने कि हमने आपका कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी आपने हमें चुनौती दी, हमें युद्ध के लिए ललकारा, हमसे युद्ध किया, क्या कारण है? तो उस समय चित्ररथ ने एक बात कही थी, अन्य कई बातों में एक बात कही थी कि आप बिना किसी पुरोहित के, बिना किसी गुरु को स्वीकारे हुए इस समय वन में ऐसे विचरण कर रहे हैं, इसीलिए आपको मैंने चुनौती दी। अर्थात चित्ररथ जो गंधर्व हैं, देवताओं की एक श्रेणी में आते हैं, वे ये बता रहे थे कि मनुष्य जीवन में रहते हुए मनुष्य को कभी भी बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। एक पुरोहित, एक गुरु पुरोहित, अर्थात जो गुरु के स्थान पर हों, तो एक गुरु की आवश्यकता हर मनुष्य को है। तो चित्ररथ ये समझा रहे थे अर्जुन से कि भले ही आप लोग पांडव हैं, भले ही बड़े श्रेष्ठ कुल के हैं, लेकिन इस समय आप बिना किसी गुरु के, बिना किसी पुरोहित के आप चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसीलिए मैंने चुनौती दी। दूसरे शब्दों में अगर इसको समझने का प्रयास करें तो देवतागण ये कह रहे हैं या गंधर्व ये कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में एक गुरु नहीं है, एक प्रामाणिक गुरु, कोई नाम के लिए गुरु नहीं, आजकल लोग गुरु फैशन के लिए बनाते हैं, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को गुरु बनाते हैं जो प्रामाणिक परंपरा में नहीं आता, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो केवल दिखावा करता है, आचरण नहीं है जिसका, जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, जो शास्त्रों के सार को नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाना चाहिए उस व्यक्ति को जो शास्त्रों के सार को जाने, जो अपने आचरण से धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करे, जो एक प्रामाणिक परंपरा में आए, जो कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को जैसा है वैसा ही हमारे सामने प्रस्तुत करे, ऐसे व्यक्ति को हम गुरु बना सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वो कृष्ण का भक्त हो। अगर भक्ति नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान है, आत्मसंयमी व्यक्ति है, कोई लाभ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया जा सकता। तो चित्ररथ ने कहा कि क्योंकि आपके गुरु नहीं है, अर्थात देवता ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, जिन्होंने एक प्रामाणिक मार्ग को स्वीकार नहीं किया है, देवता उनके जीवन में कष्ट लेकर आते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि जिन्होंने गुरु को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया, उनके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं? उनके जीवन में कष्ट आते हैं जो गंभीरता से भक्ति करते हैं, गुरु को समर्पण कर देते हैं, उनके जीवन में कष्ट आते हैं केवल उनकी भक्ति को तीव्र करने के लिए। उनके जीवन में कष्ट आते हैं उनके कई कई जन्मों को कम करने के लिए। लेकिन साधारण व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं देवताओं के द्वारा दिए गए भौतिक नियमों के अधीन रहते हुए उन्हें कष्ट मिलते हैं। तो इसीलिए दोनों के जीवन में कष्ट आते हैं, उस व्यक्ति के भी जिसने गुरु को स्वीकारा है एक प्रामाणिक गुरु को, और उस व्यक्ति के भी जिसने गुरु को नहीं स्वीकारा, भक्ति मार्ग को नहीं स्वीकारा। दोनों में अंतर क्या है? एक, जहां जिसने भौतिक जीवन को स्वीकारा है, गुरु को नहीं स्वीकारा, उसके जीवन के कष्ट उसके भौतिक बंधन को बढ़ाते हैं। लेकिन एक भक्त जिसने समर्पण किया है गुरु को, उसके जीवन के कष्ट उसके भौतिक बंधन को काटते हैं, क्योंकि वो दुखों में कृष्ण को याद करता है। और कुंती महारानी कहती हैं कि जितना व्यक्ति आपको याद करता है कष्टों में, आपको स्मरण करता है, उतना ही वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए आगे चलकर पांडवों ने वहीं पर रहने वाले एक बहुत महान ऋषि धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित बनाया। ये धौम्य ऋषि देवल ऋषि, बहुत बड़े ऋषि हैं देवल, जिनका नाम भगवद गीता में अर्जुन लेते हैं आगे चलकर। तो उनको, उनके छोटे भाई हैं। तो धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित बनाया, गुरु बनाया, और फिर उनको लेकर वो पांचाल नगरी की ओर चलने लगे। रास्ते में अन्य कई ब्राह्मण मिले, ब्राह्मणों ने पूछा, अरे आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ, हम भी जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ होगा, स्वयंवर हो रहा है द्रौपदी का। तो सब उस तरफ चलने लगे। अब ऐसे चलते हुए पांडव पांचाल नगरी में आए। पिछली बार आपको याद होगा कुंती महारानी ने युधिष्ठिर से कहा था कि हमने पांचाल नगरी वैसे भी नहीं देखी है, चलो जाकर देखाते हैं। तो ऐसे पांडव पांचाल नगरी में पहुंचे और एक कुम्भार, कुम्भार अर्थात जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके घर में रहने लगे। अभी भी छुपे हुए हैं, अभी भी अपने आप को प्रकट नहीं किया है। पिछली बार जब हम वर्णन कर रहे थे कि वे लोग बचकर भागे अर्थात अग्नि से, तो फिर उन्होंने अपने आप को छुपा कर रखना ही अच्छा समझा, अन्यथा दुर्योधन इत्यादि उस समय बिना किसी, उस समय तो उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र इत्यादि नहीं थे, सेना नहीं थी, तो हो सकता है दुर्योधन आक्रमण करता, इसीलिए विदुर के अनुसार उनको थोड़े समय छुप कर रहना था। तो छुप कर अभी भी रहे, कुम्भार के घर में रहने लगे, भिक्षा इत्यादि मांगते और उसी में खाया करते, और इधर स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। तो स्वयंवर प्रारंभ हुआ यज्ञ से, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, और यज्ञ प्रारंभ होने के 16 दिन तक जब यज्ञ चल चुका, तब उस दिन स्वयंवर का दिवस था। वैसे राजा द्रुपद अपने हृदय में ये चाहते थे कि अर्जुन से मेरी पुत्री का विवाह हो। तो जब उन्होंने समाचार सुना कि वारणावत में ये सब जलकर मर गए हैं, बहुत दुखी हुए, विश्वास नहीं हुआ। उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि ऐसा नहीं है, पांडव जीवित होंगे, और उनसे कहा भी गया, महाराज आप चिंता नहीं कीजिए, पांडव कहीं ना कहीं जीवित हैं, आप स्वयंवर कीजिए, जहां भी होंगे वो स्वर्ग में भी होंगे तो चले आएंगे। और इसीलिए उन्होंने स्वयंवर की एक शर्त रखी। स्वयंवर के लिए एक उन्होंने विशेष धनुष बनाया, साधारण धनुष नहीं था, बड़ा भारी धनुष था। महाभारत में वर्णन है कि केवल अर्जुन ही उठा सके, ऐसा धनुष था, और 5 तीर उन्होंने विशेष बनाए, ये तीर भी बड़े भारी थे। और शर्त ये रखी कि जो भी व्यक्ति स्वयंवर में भाग लेना चाहे, तो ऊपर एक यंत्र बनाया जो घूम रहा था, और उसके बीच में सीधे मारना था तीर को, 5 तीरों को, 5 तीर एक ही समय पर एक ही स्थान पर मारने हैं, और वो भी नीचे जल में उस यंत्र का प्रतिबिंब देखकर। देखिए बड़ा कठिन था, सीधे देखकर भी नहीं मारना है, नीचे देखना है जल में, वो घूम रहा है, और घूमते घूमते उसके बीच में एकदम मारना है, और 5 तीर वहां लगने चाहिए। और धनुष बड़ा भारी था, विशेष बनाया गया था, दरअसल उन्होंने बनाया ही अर्जुन के लिए था, वो चाहते थे बस अर्जुन आए। तो खैर जब ये स्वयंवर हुआ तो वहां द्रौपदी प्रकट हुई, हाथ में उन्होंने वरमाला ली हुई थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसको पूरा करता उसके गले में वरमाला वो डालने वाली थी, ये शर्त रखी गई थी। महाभारत में वर्णन है कि जो वरमाला थी वो सोने की बनी हुई थी। तो आप सोच सकते हैं उस समय क्या ऐश्वर्य था। अभी तो हम लोगों का इतना पतन नहीं हुआ, अभी तक फूलों की माला पहनाते हैं, लेकिन आगे चलकर निश्चित प्लास्टिक की माला पहनाएंगे हम, क्योंकि इतना प्लास्टिक बढ़ रहा है तो आगे चलकर यही होगा। तो खैर उन्होंने वरमाला लेकर वो आई, और उस समय धृष्टद्युम्न उनके भाई ने जितने राजा बैठे थे उनका परिचय कराया द्रौपदी से, क्योंकि अभी विवाह करना है, तो परिचय करा रहे थे कि देखो कौन कौन राजा बैठे हैं, और इनमें से कोई एक को आपको वर चुनना है जो ये शर्त को पूरा करेगा। तो उन्होंने नाम गिनाने शुरू किए, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, शकुनी के पुत्र, सब बैठे थे वहां पर, और भी बहुत सारे राजा, और श्री कृष्ण, बलराम, अन्य यदुवंशी राजा, बहुत सारे लोग आए थे स्वयंवर में, तो कर्ण भी आए थे। देखिए आपको याद होगा पिछले 2 या 3 हफ्ते पहले हमने वर्णन किया था कि कई स्थानों पर अर्जुन ने यह प्रमाण दिया था कि अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ हैं। आप में से किसी को याद है कौन कौन से स्थान पर प्रमाण दिया था? किसी को भी याद है? हमने ये वर्णन किया था कि अर्जुन ने प्रमाण दिए कि कि अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ थे, राजा द्रुपद को हराया। यस, द्रुपद को हराया, कर्ण तो भाग गए थे मगर अर्जुन ने हराया। और हाँ जी, गंधर्व को हराया। यस, और यहां भी अब हम देखेंगे आज के प्रसंग में कि कर्ण से श्रेष्ठ थे अर्जुन, इसीलिए इस बात को मानना कि दरअसल कर्ण श्रेष्ठ थे, उनके साथ अन्याय हुआ, ये गलत है। तो अब यहां पर कर्ण बैठे हैं, बहुत सारे राजा बैठे हैं, दुर्योधन अपने कई भाइयों के साथ बैठे हैं, श्री कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, शाल्य हैं, शाल्व नरेश हैं, सारे जरासंध हैं, बड़े बड़े महान राजा वहां बैठे थे, सब आए थे द्रौपदी के स्वयंवर में। तो उस समय सबका परिचय दिया धृष्टद्युम्न ने, द्रौपदी से कहा ये सारे राजा हैं, बड़े बड़े वर्णन किए, और फिर उसने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस धनुष पर, उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ी हुई थी, प्रत्यंचा मतलब वो जो धनुष का धागा होता है, तो प्रत्यंचा चढ़ी नहीं थी, तो जो भी व्यक्ति इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इन पांच तीरों को एक साथ ऊपर छोड़ेगा और वो सब बीच में जाकर लगेंगे और नीचे देखते हुए, तो वो व्यक्ति द्रौपदी के वर के रूप में स्वीकारा जाएगा। तो सभी राजाओं ने प्रारंभ किया आना। तो महाभारत में वर्णन है कि ये जो धनुष था वो इतना भारी था, इतना शक्तिशाली था कि जब लोगों ने आकर उसको उठाना, कई लोग तो उठा नहीं पाए, ऐसे दूर गिर गए जाकर, और फिर अगर किसी ने बड़ी मुश्किल से उठाने का प्रयास भी किया तो प्रत्यंचा को चढ़ा नहीं पाए, जैसे ही घुमाने जाते झटका लगता, दूर जाकर गिरते थे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा, कोई नहीं हिला पाया। तो ऐसे बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया, सब आ रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर धूल चाट कर वापस जा रहे हैं। और फिर दुर्योधन उठे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौरधाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और फिर दुर्योधन उठे और उन्होंने कहा कि अब सब कहने लगे वाह। और दुर्योधन वैसे भी बड़े शक्तिशाली हैं, वैसे दुर्योधन के पहले कर्ण उठे थे ऐसा वर्णन है। तो दुर्योधन भी उठे, दुर्योधन गए, सबने सोचा कि अब तो दुर्योधन तो इतना शक्तिशाली है, राजा है, ये सब कर लेगा। तो वर्णन है कि दुर्योधन ने भी प्रयास किया उसको उठाने का, लेकिन दूर जाकर गिर पड़ा, सारे कपड़ों में धूल लग गई। तो फिर वहाँ से भी वो भी निंदित होकर वहाँ से वो चला गया, उठ के चला गया। और फिर कर्ण ने भी प्रयास किया। महाभारत के कई संस्करणों में कर्ण के इस प्रयास के विषय में दो अन्य वर्णन हैं। एक वर्णन है कि कर्ण उठा ही नहीं पाए, ये ज़्यादातर महाभारत के संस्करणों में यही वर्णन आता है कि कर्ण गए, कर्ण ने प्रयास किया लेकिन कर्ण उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए और फिर वो आ गए। एक संस्करण में महाभारत के ये वर्णन है कि वो गए, उन्होंने इस धनुष को उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, लेकिन उस समय द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने कहा मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, सूत वर्ण के व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी, मैं तो केवल क्षत्रिय से विवाह करूंगी या फिर उनसे ऊंची जाति के, लेकिन सूत पुत्र से नहीं। तो वहां पर वर्णन है कि उस समय कर्ण ने सूर्य देव की ओर देखा और फिर हंसकर चले गए वहां से। हैं तो वो सूर्य पुत्र, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था। तो ये दो वर्णन हैं। तो दूसरे ज्यादातर पहला वर्णन मिलता है कि कर्ण भी उठा नहीं पाए उन उसको। तो जब सब लोग हार गए, फिर जरासंध आए, जरासंध के अंदर तो बहुत बल था, जरासंध ने प्रयास किया, शाल्य ने प्रयास किया, शाल्व नरेश ने प्रयास किया, कोई हिला नहीं पाया उसको। और जब ऐसे सारे राजा हार गए, हाहाकार होने लगा वहां स्वयंवर में कि ये क्या हुआ, क्योंकि सब सोच रहे थे अरे ये तो बड़े सरल चीज है, ऐसे जाऊंगा मारूंगा, चलाना तीर तो छोड़िए, कोई उठा ही नहीं पाया। तो जब ऐसे हाहाकार होने लगा, तब अर्जुन जब वहां पर थे उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा ली और वो चल दिए। तो जब अर्जुन चलने लगे तो सारे जो ब्राह्मण थे कुछ प्रसन्न हुए, कुछ दुखी हो गए। जो दुखी हुए ब्राह्मण कहने लगे कि अरे अरे ये क्या कर रहा है, ये इतने बड़े बड़े योद्धा जरासंध, कर्ण, दुर्योधन, जिस धनुष को हिला नहीं सके, ये छोटा सा ब्राह्मण बालक, उस समय तो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने मृगचर्म धारण किया हुआ था, तो ये छोटा सा ब्राह्मण बालक ये क्या करेगा, जाके हमारी नाक कटाएगा, रोको इसको। लोग कहेंगे ये ब्राह्मणों के अंदर कैसा गर्व आ गया जो इतनी बड़ी काम करने चल दिए। तो सब कहने लगे रोको, लेकिन कुछ ब्राह्मण कहने लगे नहीं नहीं, क्या आप जानते नहीं हो कि शरीर से या बल से कार्य नहीं होता है। व्यक्ति छोटा दिख सकता है लेकिन बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। जैसे उन्होंने कहा अगस्त्य ऋषि, वो सारे समुद्र को पी गए थे, तो इतने छोटे से ऋषि, इतने छोटा सा मनुष्य सारे समुद्र को कैसे पी सकता है। तो इसलिए चिंता नहीं करो, भगवान की योजना होगी, जाने दो, कम से कम हमारे ब्राह्मण समाज की नाक ऊपर हो जाएगी। और अगर वो नहीं भी कर पाया तो भी क्या है, कोई इतने बड़े बड़े क्षत्रिय नहीं कर पाए, तो ब्राह्मण ने भी नहीं किया तो क्या बात है। तो उस समय ऐसा वर्णन है कि जब अर्जुन चलने लगे तो अर्जुन को केवल देखकर सारे ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों को ऊपर कर जोर जोर से ध्वनि करने लगे, घोषणा करने लगे। और सारे क्षत्रिय देख रहे थे कि ये ब्राह्मण, दरअसल पहले जब ये ब्राह्मण बैठे थे, अब प्रश्न ये आता है, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि उस स्वयंवर में श्री कृष्ण और बलराम जी भी थे, हमसे किसी ने प्रश्न किया था, तो फिर श्री कृष्ण ने क्यों नहीं द्रौपदी को जीत लिया, क्या वो धनुष चलाना नहीं जानते थे, क्या बलराम जी नहीं चला सकते थे, क्या बलराम जी की इतनी शक्ति नहीं थी कि वो किसी एक धनुष को उठाकर चला सके, सारे राजा नहीं चला पाए, तो ऐसा क्या हुआ। तो महाभारत में बहुत स्पष्ट इसका उत्तर दिया गया। महाभारत में कहा कि जितने यदुवंशी थे वहां, उन सब में बल था, शक्ति थी, श्री कृष्ण और बलराम में तो था ही, लेकिन जब यह स्वयंवर प्रारंभ हुआ तो श्री कृष्ण ने देखा ब्राह्मणों के दल में, और उन्होंने पांडवों को देखा, और उन्होंने बलराम जी को दिखाया, उन्होंने बलराम जी से कहा वो देखो, वो अर्जुन है, वो भीम है, वो युधिष्ठिर हैं। तो बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए कि इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये जीवित हैं। और उस समय के बाद से श्री कृष्ण के कहने पर कोई यादव उठे नहीं, कोई यदुवंशी ने प्रयास नहीं किया धनुष उठाने का, कृष्ण और बलराम ने तो किया ही नहीं। तो ऐसा वर्णन नहीं है कि कृष्ण बलराम ने प्रयास किया और वो धनुष को उठा नहीं पाए, नहीं, श्री कृष्ण बैठे रहे, और क्योंकि वो उनके प्रमुख हैं यदुवंशियों के, तो जब तक उन्होंने नहीं कहा कोई यदुवंशी उठकर नहीं गए। देखिए हमारे समाज में पहले कितनी सभ्यता थी, कितने नियमों का पालन था, बड़े बड़े शक्तिशाली बैठे हैं, वो चाहें तो जाकर उठा सकते हैं, लेकिन केवल कृष्ण नहीं कहा कृष्ण ने, इसीलिए कोई नहीं गए। तो ऐसे नियमों का पालन, कृष्ण से बड़े बड़े व्यक्ति थे, ऐसे नहीं कि सब कृष्ण से छोटे थे, वर्णन है कि कृष्ण भी थे और उस समय कृष्ण के पुत्र भी वहां उपस्थित थे, बहुत सारे यदुवंशी थे। लेकिन देखिए कैसा, कैसी हमारी सभ्यता थी कि अगर जो प्रमुख हैं उन्होंने मना कर दिया, वो हिले नहीं, तो कोई यदुवंशी गए नहीं, बलराम जी भी नहीं गए, क्योंकि कृष्ण ने मना कर दिया था कोई नहीं जाएगा। तो ये उत्तर है इस प्रश्न का कि श्री कृष्ण और बलराम वहां पर उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने द्रौपदी को क्यों नहीं जीता। तो इस तरह से सारे यादवों को उन्होंने मना किया कृष्ण ने, तो अब कोई और उसको उठा नहीं पाए। कर्ण के लिए लोग सोच रहे थे, कर्ण भी कर नहीं पाए, तो फिर अब अर्जुन चले, और उस समय श्री कृष्ण ने बलराम को फिर से दिखाया ये अर्जुन है, और बहुत प्रसन्न हुए वो। उस समय उनकी वेशभूषा और राजाओं को क्यों नहीं दिखे वो दल में? महाभारत वर्णन करता है जब श्री कृष्ण ने देख लिया कि ये 5 पांडव हैं, तो बाकी राजाओं ने क्यों नहीं देखा? इतने सारे राजा वो भी तो जानते थे पांडवों को, तो उन्होंने क्यों नहीं देखा? तो महाभारत में वर्णन है कि वो सब द्रौपदी की ओर देख रहे थे। द्रौपदी बहुत सुंदर थी तो सबका ध्यान उसकी ओर था कि किसको मिलेगी किसको मिलेगी। तो इसी चक्कर में वहां पर ब्राह्मणों में बैठे हुए पांडवों को कोई देख नहीं पाए, और श्री कृष्ण तो द्रौपदी को इस तरह देख नहीं रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने देख लिया। तो खैर अब अर्जुन चले, और अर्जुन वहां पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी आसानी से उस धनुष को उठा लिया। सारे राजा हैरान हो गए कि अरे हम क्षत्रिय, इतना बल हमारे अंदर, हम नहीं कर पाए, ब्राह्मण ने कर लिया। तो उन्होंने बड़े आसानी से उठाया, उस पर प्रत्यंचा लगाई, वो 5 तीर लिए, वो भी बहुत भारी तीर थे, और फिर उन्होंने बड़ी आसानी से नीचे जल में देखते हुए ऊपर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ दिया और उस केंद्र में सीधे वो जाकर लगे, और सारी सभा में हाहाकार हो गया, अरे ये क्या हुआ ये क्या हुआ। और जब सब हाहाकार कर रहे थे तो युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर वहां से चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा अब हंगामा होगा, हम लोग पहचान लिए जाएंगे, इसलिए हमें चले जाना चाहिए। तो प्रश्न ये आता है कि अरे अब तो युद्ध होने वाला था, हो सकता है राजा आक्रमण कर देते, तो युधिष्ठिर क्यों चले गए? अब तो उन्हें खड़ा रहना था अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए, लेकिन वो चले क्यों गए? इसीलिए वो केवल नकुल और सहदेव को लेकर गए, भीम को छोड़ गए वहां पर, क्योंकि जानते थे भीम है कुछ नहीं होने वाला है, जहां अर्जुन है और जहां भीम है वहां मेरी आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए नकुल और सहदेव को लेकर वो चले गए, अर्थात उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ये सारे राजा भी अगर आक्रमण कर देंगे तो बड़ी आसानी से मेरे दोनों भाई उनको हरा सकते हैं। तो जब वो चले गए, अब ये दोनों ही बचे, सारा हाहाकार हो गया कि राजा द्रुपद ने हमारा अपमान कर दिया, एक ब्राह्मण को अपनी पुत्री दे दी, क्योंकि जैसे ही ये हुआ द्रौपदी तुरंत आई और उन्होंने अर्जुन के गले में हार डाल दिया और वो चल दी, और ये दोनों चल दिए क्योंकि इतना हाहाकार हो रहा है, तो ये दोनों चलने लगे, द्रौपदी भी पीछे चलने लगी। तो उस समय बड़ा द्रुपद के लिए संकट हो गया, क्योंकि सारे क्षत्रिय कहने लगे अपमान कर दिया इसने, हमें बुलाया यहां पर और एक ब्राह्मण को अपनी पुत्री दे रहा है, अभी हमें इसका वध कर देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बाकी क्षत्रिय भी ऐसे करेंगे। तो सारे राजा एक साथ द्रुपद पर आक्रमण कर रहे, द्रुपद घबरा गए, इतने सारे राजा, एकाधी के 1-2-3 आते, सारे के सारे राजा। तो उस समय अर्जुन और भीम ने देखा, तो अब तो उनका कर्तव्य था राजा द्रुपद की रक्षा करना, तब उस समय उन्होंने द्रौपदी को पीछे किया और अर्जुन खड़े हो गए। अब भीम के पास उस समय उनकी गदा नहीं थी, तो भीम ने आसपास देखा कहां है, तो एक बहुत विशाल वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष, तो भीम ने जाके वो पूरा वृक्ष उखाड़ लिया और ऐसे आके खड़े हो गए। जब राजाओं ने केवल देखा कि ये क्या आदमी है, कौन है ये, इतना बड़ा वृक्ष उखाड़ कर खड़ा हो गया मारने के लिए, तो वैसे ही घबरा गए सब। और उस समय श्री कृष्ण ने बलराम जी को दिखाया कि देखो ये कार्य भीम के अलावा और कोई नहीं कर सकता, अचानक इतना बड़ा वृक्ष उखाड़ लेना। और सारे राजाओं के सामने अर्जुन भी खड़े हो गए युद्ध करने के लिए कि ठीक है आइए युद्ध कीजिए, कोई डरे नहीं। तो जब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था तो कृष्ण ने सबको रोक दिया। कृष्ण ने कहा कि देखो इस ब्राह्मण ने नीति से नियम से द्रौपदी को जीता है, द्रौपदी के लिए शर्त रखी गई थी, आप सबको अवसर दिया गया था लेकिन आप सबने किया नहीं, इसने नियम से जीता है, तो उसमें क्या गलती है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, इस समय शांत हो जाइए। तो कृष्ण के कहने पर सारे राजा शांत हो गए और फिर द्रौपदी को लेकर ये लोग चले गए। तो अभी विवाह नहीं हुआ, अभी द्रौपदी उनके साथ चली गई, स्वयंवर हो गया था। तो उस समय जब द्रौपदी चली गई तो अभी तक तो द्रुपद को पता नहीं था कि किसको मैंने अपनी पुत्री दे दी है। तो धृष्टद्युम्न और कुछ और उनके निजी सेवक वो पीछे पीछे गए। तो अब ये दोनों लेकर आए द्रौपदी को, और उन्होंने आकर घर में आए, कुंती महारानी अंदर थी, वो चिंता में थी कि क्या हो गया, अभी तक दोनों आए नहीं, क्या कहीं किसी राक्षस ने मार डाला या राजाओं से युद्ध हो गया, क्या हुआ। तो अचानक वो आए और उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं और आपके लिए कोई भेंट लाए हैं। ये नहीं कहा कि हम विवाह करके आए या हम द्रौपदी को लाए, आपके लिए लाए हैं कुछ। तो कुंती ने कहा जो भी लाए हो आपस में बांट लो, वो सब तुम्हारे पांचों भाइयों के लिए है। तो जैसे ही अर्जुन ने ये सुना, भीम ने ये सुना कि ये क्या हो गया एकदम अचानक, तब तक कुंती बाहर आई और उन्होंने देखा कि द्रौपदी खड़ी हैं साथ में। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या मेरे मुख से अधर्म की बात निकल गई कि मैंने कह दिए तुम्हारे पांचों के लिए है। तुरंत द्रौपदी को लिया, अंदर गई युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर बैठे थे और युधिष्ठिर धर्मराज हैं। तो कुंती महारानी ने युधिष्ठिर से कहा कि देखो मेरे मुख से ये बात निकल गई, मैंने ये कह दिया कि तुम्हारे पांचों के लिए है, लेकिन ये कैसे संभव है, मुझे लग रहा है कहीं ये अधर्म ना हो, तो अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। देखिए कुंती महारानी जो माता हैं वो भी धर्म के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर से वार्ता करती हैं, तुम बताओ सही क्या है, मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया लेकिन तुम बताओ। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अगर आपने ये कहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। सब भाइयों को बुलाया, सब बैठे थे, द्रौपदी भी थी, तो ये माँ ने ऐसा कहा है तो अब क्या होना चाहिए, चर्चा चल रही थी। तो उस समय युधिष्ठिर ने ऐसे ही कह दिया अर्जुन का मन देखने के लिए कि अर्जुन तुमने इसे जीता है, तुम इससे विवाह कर लो। तो अर्जुन ने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, अभी आपका विवाह नहीं हुआ, भीम का विवाह नहीं हुआ, मतलब भीम का एक विवाह हुआ था लेकिन वो तो उसी समय खत्म भी कर आ गए थे, भीम हिडिम्बा से पुत्र भी उत्पन्न करके आ गए थे, तो भीम का विवाह नहीं हुआ, मैं कैसे विवाह कर सकता हूं, ये अधर्म की बात आप कैसे कर सकते हैं। तो फिर उस समय जब द्रौपदी सामने थी तो युधिष्ठिर सारे भाइयों की ओर देख रहे थे और वो देख रहे थे कि युधिष्ठिर बाकी सारे भाई भी आकर्षित थे। तो इसीलिए उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों की पत्नी बनेगी, और सभी भाई आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा तो ठीक है। और उसी समय श्री कृष्ण वहां पर आए, श्री कृष्ण और बलराम वो आए, उन्होंने युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए, कुंती महारानी के चरण स्पर्श किए। देखिए भगवान भी जब आते हैं तो भगवान को आवश्यकता नहीं है कुंती महारानी के चरणों की या युधिष्ठिर महाराज के चरणों को स्पर्श करने की, लेकिन नियम का पालन करते हैं एक सभ्यता को स्थापित करने के लिए। क्योंकि अगर भगवान नहीं करें, भगवद गीता में भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कर्म नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं कार्य ना करूं तो जितने भी लोक हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। उत्सिदेयूरी में लोका न कुरियात कर्म हम, अगर मैं कर्म नहीं करूं तो सारे लोक समाप्त हो जाएंगे। तो केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान कर्म करते हैं, इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि अरे ये कैसे भगवान हैं, देखो उन्होंने चरण छू लिए युधिष्ठिर के तो युधिष्ठिर महान हो गए उनसे, नहीं। कुंती महारानी के चरण छुए लेकिन कुंती महारानी प्रार्थनाएं करती हैं बाद में कि आप परम पुरुष हैं, आप भगवान हैं। तो उन्होंने चरण स्पर्श किए और जल्दी से वहां से चले गए। उन्होंने कहा अगर हम यहां रुकेंगे तो लोग पहचान लेंगे आपको, बस हम आपको प्रणाम करने आए थे। तो वो चले गए। दृष्टद्युम्न देख रहे थे रात भर, वो देखते रहे, उन्होंने देखा, उनको पता चला कि ये पांडव हैं तो बहुत प्रसन्न हो गए कि मेरी बहन का विवाह कहीं गलत जगह नहीं हुआ है। तो वापस आए अपने पिता के पास, द्रुपद के पास, और उनसे उन्होंने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, आपकी इच्छा थी ना, आपके हृदय में बड़ी इच्छा थी। तो उन्होंने प्रश्न किया था दृष्टद्युम्न से कि तुम देखकर आए हो, बताओ जल्दी बताओ कौन है वो लोग, किन से मेरी पुत्री का विवाह हुआ है, मेरी तो बहुत इच्छा थी कि अर्जुन से हो, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि क्या विधि का विधान है। तो दृष्टद्युम्न ने कहा चिंता नहीं कीजिए, आप जो चाहते थे वही हुआ है। तो बहुत प्रसन्न हो गए द्रुपद, उन्होंने तुरंत अपने पुरोहित को भेजा, जाओ पूछ कर आओ उनसे वो कौन है पक्का करने के लिए। तो पुरोहित गए, उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, युधिष्ठिर महाराज ने बिठाया। तो उस समय उनके पुरोहित ने पूछा उनसे कि द्रुपद महाराज की इच्छा है, वो जानना चाहते हैं कि आपका कुल कौन सा है, कौन से वर्ण के हैं आप, क्या कार्य करते हैं, आपके माता पिता का नाम इत्यादि। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने फिर बड़ी स्पष्टता से कहा कि हम पांडुपुत्र पांडव हैं, हम सब भाई, अपने अपने नाम बताए। तो इतने में दूसरा एक सेवक आया और उसने कहा कि द्रुपद महाराज ने आप सबको बुलाया है, घर पर भोजन की व्यवस्था की है। तो फिर ये सब पांडव द्रौपदी के साथ, कुंती महारानी के साथ द्रुपद महाराज के महल में गए। द्रुपद ने बहुत स्वागत किया और द्रुपद ने फिर भी वो जानना चाहते थे, पक्का करना चाहते थे कि पांडव हैं, तो अलग अलग शस्त्रों को रख दिया, भोग की वस्तुओं को रख दिया, बहुत सारी चीज़ों को रखा, वेद मंत्र वेद इत्यादि रख दिए, ये देखने के लिए कि जब ये लोग आते हैं तो किस तरफ इनका झुकाव है। तो ये पांचों आए, इनको भोजन के लिए बिठाया, भोजन किया, और भोजन करने के तुरंत बाद सबसे पहले ये लोग गए शस्त्र देखने के लिए। वहाँ पर रखे थे, तलवार थी, धनुष थे, गदा थी, तो बहुत समय से उठाया नहीं तो सबके हाथों में जरा कुछ तकलीफ हो रही थी। तो जैसे ही शस्त्र को देखा सब जाकर उठाने लगे। देखिए जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो सबसे पहले उसी ओर भागता है, ये निश्चित है। अगर किसी का स्वभाव कृष्ण की ओर है तो वो कहीं गलत जगह में जाकर भी थोड़ी सी चीज कृष्ण की देख ले तो उस ओर भाग लेता है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण चैतन्य लीला में आता है। भगवान के एक बहुत महान भक्त थे, वो एक समय एक राजा के पास गए और वो राजा को उस समय मोर पंख से पंखा झला जा रहा था। और जब उन्होंने केवल वो मोर पंख को देखा, जबकि वो राज्यसभा में थे, वो वैद्य थे, राजा का इलाज करने गए थे, लेकिन केवल मोर पंख को देखकर वो मूर्छित हो गए, क्योंकि उनको कृष्ण का स्मरण आ गया। तो इसीलिए जो व्यक्ति जैसी चेतना रखता है, जैसा स्वभाव रखता है, उसी ओर भागता है। अगर मान लीजिए हमारे हृदय में कृष्ण की भक्ति है तो हम कहीं भी जाएंगे तो वहां प्रयास करेंगे कृष्ण भक्तों को ढूंढने का, कृष्ण की भक्ति कर लेने का। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं है तो मंदिर में आकर भी, कृष्ण के सामने रहकर भी हम कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे। इसीलिए चेतना अच्छी रखनी चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं। कृष्ण प्रसन्न होते हैं हमारे मन से, हमारी चेतना से, हमारे भावों से। कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हमारे केवल बाहरी कार्यों से जिसका उद्देश्य गलत हो, क्योंकि हम अपने बाहरी कार्यों से गलत उद्देश्य हृदय में रखते हुए लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। वो जानते हैं हमारे हृदय में क्या भाव है, वो जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भक्ति की क्रियाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना उन क्रियाओं को करने का उद्देश्य। उदाहरण के लिए हमारा जप करना, हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ये जप करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जप करने का उद्देश्य या उसका भाव, किस भाव में आप जप करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जप करने में तीन अवस्थाएं होती हैं। एक, जहां हम भौतिक इच्छाओं को रखते हुए, अपराध करते हुए भगवान का नाम लेते हैं। दूसरा, जहां हम अपराध बंद कर देते हैं लेकिन भगवान का नाम लेते हैं। और तीसरा, अपराध अर्थात हम ये भारतीय कानून के तहत आने वाले अपराध की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाम अपराधों की बात कर रहे हैं। और तीसरी अवस्था वो है जहां व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपराध के युक्त नाम लेता है उसको केवल भौतिक लाभ होते हैं, कुछ भौतिक कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ धन मिल जाता है, कुछ पद मिल जाता है, पदवी मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। लेकिन देखिए, ये धन, ये पद, ये शक्ति, ये सब भौतिक हैं, शरीर के साथ समाप्त हो जाने वाली हैं। कितना समय रहेगा ये धन आपके पास, कितने समय रहेगी ये शक्ति, ये बल, ये सौंदर्य। इसलिए हमें वो चीज मांगनी चाहिए भगवान से जो सदैव हमारे साथ रहे, और वो है भक्ति। इसलिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है किसी भी चीज का, भक्ति के कार्यों का भी। इसीलिए सच्चे हृदय से हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे हृदय में वासनाएं हैं, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, कोई चिंता नहीं, भगवान उसको दूर करेंगे। केवल एक चीज चाहिए हमारे हृदय में, एक सच्ची भावना इन चीजों को दूर करने की, बस। बाकी कार्य कृष्ण करेंगे, बाकी कार्य भगवान के भक्त करेंगे, लेकिन एक सच्ची भावना चाहिए कि मैं इन चीजों को अपने हृदय से दूर करना चाहता। तो इसीलिए भगवान के पास हम इन सारी चीजों को लेकर आते हैं। किसी एक व्यक्ति ने भजन लिखा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, क्यों कह रहे कि मेरे हृदय में बहुत सारी गंदगी है इसलिए भगवान आपके पास नहीं आ सकता। हमारा प्रश्न है तो कहां जाओगे? अगर मैली चादर ओढ़कर भगवान के पास नहीं आओगे तो किसी और में शक्ति नहीं है तुम्हारी चादर धोने की, केवल भगवान धो सकते हैं। इसीलिए मैली चादर है कोई बात नहीं, हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सरी सब कुछ है, कृष्ण के पास आइए, कृष्ण उसको दूर करेंगे। कृष्ण के नाम लीजिए, भक्ति कीजिए, बाकी और कोई मार्ग नहीं है। और क्यों नहीं है? क्या अन्य किसी मार्ग से हमारे हृदय के ये काम क्रोध दूर नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार, ये स्वभाव हमें अपने कर्मों से मिला है, और हमारे कर्मों को बदलने का अधिकार केवल एक व्यक्ति के पास है, और वो है श्री कृष्ण। और क्यों है? क्योंकि वो कर्मों के परे हैं, वो कर्मों के बंधन में नहीं हैं, वो कोई पद पर नहीं हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की भक्ति आवश्यक है। तो इसे ये चर्चाएं जब वहां उन लोगों ने देखा द्रुपद महाराज ने कि इन्होंने शस्त्र उठा लिए, और फिर द्रुपद महाराज ने आकर फिर से उनसे पूछा और पक्का कर लिया कि यही पांडव हैं। तो द्रुपद महाराज ने कहा कि अर्जुन ने मेरी पुत्री को स्वयंवर में जीत लिया है, तो विवाह की तैयारी करते हैं, अर्जुन विवाह करें। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं, अर्जुन कैसे करेंगे, अन्यों का विवाह बाकी है। तो द्रुपद महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आप विवाह कर लीजिए द्रौपदी से, या भीम कर लें, या नकुल, सहदेव, जो आप कहेंगे वैसा होगा, कोई भी भाई, मुझे कोई चिंता नहीं, आप में से एक जो भी कर लें। अभी द्रुपद महाराज कुछ सुनने वाले थे जो उन्होंने कभी जीवन में सुना नहीं था, इसलिए बड़े आराम से कह रहे थे, आप कर लीजिए, कोई कर ले, कोई बात नहीं, आप पांचों मेरे लिए एक समान है। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं, हम पांचों द्रौपदी से विवाह करेंगे। द्रुपद महाराज ने सुना, उनको विश्वास नहीं हुआ, ये क्या सुन लिया, और वो भी कौन कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों विवाह करेंगे। उन्होंने कहा, धर्मराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मैंने कभी सुना नहीं है, ये तो धर्म नहीं है, ये अधर्म के मार्ग पर डालने वाली कैसी बात आपने कर दी कि आप पांचों विवाह करेंगे। और उसी समय वहां पर व्यासदेव प्रकट हुए। तो व्यासदेव आए, सबने स्वागत किया, बिठाया। तो व्यासदेव ने पूछा, बताइए क्या चर्चा चल रही थी। व्यासदेव तो सब जानते थे क्या चर्चा चल रही। तो द्रुपद ने कहा कि द्रौपदी के विवाह की चर्चा चल रही है, और बात ऐसी हुई कि युधिष्ठिर ने कहा कि पांचों विवाह करेंगे, तो अब तक हमने ये बात की है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। व्यासदेव ने कहा, नहीं, पहले आप लोग अपने अपने पक्ष रखिए, हम बाद में बताएंगे। तो द्रुपद से कहा, तो द्रुपद ने कहा कि देखिए, मैं तो जहां तक इसको मानता हूं, ये अधर्म है। हाँ, एक राजा कई पत्नियां रख सकता है, ये हमने इतिहास में सुना, हम देख भी रहे हैं, और ये शास्त्र के सम्मत है। लेकिन एक स्त्री कई पति रखे, ये तो अधर्म है, मेरे हिसाब से तो अधर्म है, आप जो चाहें वो कह सकते हैं, आप तो व्यासदेव आप सब जानते हैं। और धृष्टद्युम्न ने भी यही कहा कि हमने कभी सुना नहीं है, तो हम इस बात को कैसे मान लें। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर से पूछा, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो। तो बहुत सुंदर बात युधिष्ठिर ने कही। पहली चीज युधिष्ठिर ने कही कि आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये मेरे मन में ये बात आई है और मेरे मुख से ये बात निकली है, तो ये धर्म है। बहुत विश्वास के साथ कहा गया ये वाक्य। कौन कह सकता है इसको? वो कहते हैं कि अगर मेरे मन में द्रौपदी से विवाह करने का बात आई है, या हम पांचों के विवाह करने की बात आई है और मेरे मुख से निकली है, तो ये धर्म है। क्योंकि मैं कभी असत्य नहीं कहता, अधर्म नहीं कहता। देखिए पहले के समय में लोगों के क्या चरित्र हुआ करते थे, आप विश्वास कर सकते हैं? इतना विश्वास था उन्हें कि अगर मैंने कहा है तो ये धर्म है, क्योंकि मैंने कभी अधर्म किया ही नहीं, मेरे मुख से अधर्म आ ही नहीं सकता। ये चरित्र हुआ करते थे लोगों के। इसीलिए चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है, चरित्र में बहुत बल होता है। एक ऐसा ही उदाहरण है राजा दुष्यंत का। राजा दुष्यंत एक समय वन में थे, जंगल में शिकार करते करते अकेले रह गए। एक ऋषि के आश्रम में गए, वहां पर उन्होंने ऋषि को पुकारा, ऋषि थे नहीं, उनकी पुत्री बाहर आई जिसका नाम था शकुंतला। आप सब दक्ष हैं एकदम, शकुंतला। और जैसे ही दुष्यंत ने देखा शकुंतला को, उसके मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। और उसने उनसे पूछा, शकुंतला से, आप कौन हैं, यहां इस वन में इस ऋषि के आश्रम में क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं ऋषि की पुत्री हूं। देखिए वो खुद कह रही है मैं ऋषि की पुत्री हूं, लेकिन राजा दुष्यंत ने क्या कहा? दुष्यंत ने कहा, आप ऋषि पुत्री हो ही नहीं सकती। बड़े आश्चर्य की बात, अरे वो बोल रही है मैं ऋषि की पुत्री हूं, ने कहा आप हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूं और मेरे मन में आपको देखकर आपसे विवाह करने का विचार उत्पन्न हुआ है, और मैं एक प्रामाणिक क्षत्रिय हूं, मेरे मन में किसी भी ब्राह्मण पुत्री को देखकर विवाह का विचार नहीं आ सकता। तो अगर मेरे मन में आपको देखकर ये विचार आ रहा है कि मुझे आपसे विवाह करना है, तो निश्चित आप क्षत्रिय हैं, आप क्षत्राणी हैं, आप ब्राह्मणी नहीं हो सकती। और सही में वो ब्राह्मण पुत्री नहीं थी, वो एक क्षत्रिय की पुत्री थी। तो देखिए लोगों का चरित्र कितना महान हुआ करता था। अर्थात राजा दुष्यंत इतना जानते थे कि मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, और अगर मेरे मन में कोई गलत विचार आ रहा है, इस स्त्री के प्रति विवाह का विचार आ रहा है, तो ये ब्राह्मणी हो नहीं सकती। ये चरित्र थे लोगों के, और उससे बल मिलता है। इसीलिए भक्ति में चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है। हम चरित्र को अलग रखकर भक्ति नहीं कर सकते, हम चरित्र को दूषित करते हुए, दोष लगाते हुए, दाग लगाते हुए भक्ति नहीं कर सकते। ये एक अपराध है, नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। हम ये नहीं सोच सकते कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हम जो भी गलत करेंगे कोई बात नहीं, भगवान संभाल लेंगे, है ना, दो माला एक्स्ट्रा कर लेंगे हम लोग। नहीं, ये अपराध है। तो इसीलिए चरित्र बहुत आवश्यक है, चरित्र निर्माण होना ही चाहिए। और चरित्र का आधार क्या होना चाहिए, किस आधार पर चरित्र निर्माण हो? क्या केवल कुछ अच्छी चीजें कर लेना ये चरित्र कहलाता है? क्या सत्य बोल देना ये चरित्र कहलाता है? चरित्र किसे कहा जाता है? किसका चरित्र महान होता है? महात्मा कौन कहलाता है? भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैविम प्रकृतिम आश्रितः। वो व्यक्ति जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने का अर्थ है वो व्यक्ति जो भौतिक भोगों से परे जाने का प्रयास कर रहा है, वो व्यक्ति जो इन भौतिक वासनाओं को गलत मानता है और उनसे परे जाने का प्रयास कर रहा है, और वो व्यक्ति जो श्री कृष्ण की ओर जा रहा है, जो श्री कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास कर रहा है, ये सच्चा चरित्र है। केवल कुछ अच्छे चीजें कर लेना, कुछ अच्छे बने रहना, कुछ अच्छे कार्य करना, ये चरित्र की महानता नहीं है। चरित्र की महानता है श्री कृष्ण से जुड़ना, दैविम प्रकृतिम आश्रितः, ये चरित्र की महानता है। और जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके अंदर सारे अच्छे गुण आते हैं। जितने भी देवताओं के गुण हैं वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। और जो भक्ति नहीं करता, हराव भक्तस्य कुतः महत् गुणः, उसके अंदर कौन से गुण हो सकते हैं। पद्म पुराण में लिखा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें कहा गया है, विष्णु भक्तः सुरः प्रोक्तः असुरः तद् विप्रयया। सुर और असुर की परिभाषा बड़ी सरल आधार पर की गई है, कृष्ण भक्ति के आधार पर। जो कृष्ण के भक्त हैं सुरः प्रोक्ता, उनको सुरः कहा जाता है, देवता कहा जाता है, अच्छे व्यक्ति कहा जाता है, और अन्य सब असुरः तद् विप्रयः, उसके विपरीत जो भी है, जो भक्त नहीं है, धर्म का पालन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, असुरः। तो इसलिए हमारे चरित्र का आधार है श्री कृष्ण की भक्ति। चरित्र की महानता होती है कृष्ण से जुड़ने पर, और चरित्र बनता है भक्ति करने पर, क्योंकि भक्ति करने से हृदय से सारे दुर्गुणों का नाश होता है। लेकिन व्यक्ति के हृदय में एक तीव्र आशा चाहिए, एक तीव्र इच्छा चाहिए भगवान को पाने की, तो सब कुछ होता है। जो भक्ति करते हैं उनको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे चरित्र का निर्माण होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज, क्या चरित्र होगा उनका, जो वो कहते हैं कि जो मैंने कहा वो धर्म है, अधर्म मेरे मुख से निकलेगा ही नहीं। हम में से कितने लोग अपने इस चरित्र पर इस तरह गर्वित हो सकते हैं, हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि मेरा चरित्र बेदाग है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने चरित्र को महान बनाने का। एक ही अवसर है मनुष्य जीवन में, हम इस चरित्र को निर्माण कर सकते हैं। पशु जीवन में चरित्र निर्माण नहीं होता, एक ही अवसर हमें मिला है, और वो भी कई कई मनुष्य जन्मों के बाद। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। केवल भगवान के मंदिर आने के लिए कई जन्म लग गए हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं बाजार में आया था, सड़क से जा रहा था, अचानक मंदिर आ गया, बस कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ये बाजार से मंदिर आने के लिए कई जन्म लग गए हैं हमें। वो व्यक्ति जो केवल कृष्ण के सामने आकर दंडवत करता है, कई जन्मों का फल है उसका, जो नमस्कार कर सकता है भगवान को। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा है। तो इसलिए इस अवसर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कितने जन्म हो गए, बहुत जन्म लगे हैं केवल मंदिर तक आने के लिए। कई जन्म ऐसे हमारे गए होंगे जहां हमने भगवान की ओर देखा भी नहीं, हम असुर रहे होंगे, पापी रहे होंगे, सारे पाप किए होंगे। फिर कई जन्म ऐसे चले गए जहां हम केवल यज्ञ इत्यादि करने में अपने जीवन को बिता दिए, ये सोच करके इसी यही सब जीवन है। इसीलिए बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब कई कई जन्मों के बाद ये अवसर मिला है कि हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, इसीलिए इसे खोना नहीं चाहिए, बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। तो ये मत मानिए कि अचानक हम मंदिर आ गए, किसी ने हमें बुलाया हम मंदिर आ गए, ये हो गया हमारे जीवन में हम मंदिर आ गए, वो हो गया जीवन में नहीं, ये सब भगवान की योजना थी। और अगर आप ध्यान से अपने जीवन को देखें तो निश्चित भगवान ने योजना बनाई आपको अपने तक लाने की, इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाइए। भगवान की भक्ति कीजिए, नाम का जप कीजिए, सेवा कीजिए। बहुत जन्मों के बाद ये अवसर मिला है, इसको छोड़िए मत, इसको छोटा मत समझिए, बहुत तुच्छ मत समझिए, इसका लाभ लीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा वर्णन किया। और फिर तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ये धर्म है, द्रुपद कह रहे हैं अधर्म है, निर्णय देना है व्यासदेव को। और उस समय व्यासदेव ने द्रुपद महाराज से कहा कि आप मेरे साथ दूसरे स्थान पर चलिए, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, सबके सामने नहीं। और द्रुपद महाराज को वो अलग से ले गए और उन्होंने दो इतिहास बताए, एक पांडवों का कि ये पांडव कौन है पूर्व जन्म में, पांडवों का इतिहास बताया कि जिनसे आप अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो ये कौन है। बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया, उसमें शिव जी की भी कथा आती है। तो उन्होंने वर्णन किया कि पांडवों का इतिहास क्या है, और फिर द्रौपदी का इतिहास क्या है, और फिर शिव जी के वरदान का वर्णन। तो पांडवों का इतिहास और द्रौपदी का इतिहास हम लोग अगले सोमवार को सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगले सोमवार को आगे भी वर्णन करेंगे, जैसे हम बता रहे थे द्रौपदी के विवाह के विवाद की, तो एक विवाद इस इतिहास से समाप्त हो जाएगा। वैसे धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे तो उन्होंने एक तो ये बात कही कि धर्म की, और दूसरा उन्होंने प्रमाण दिए शास्त्रों से। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में या पूर्व में इतिहास में वर्णन नहीं है कि एक स्त्री ने कई पति रखे हों, उन्होंने उदाहरण दिए, प्रमाण दिए कि इस व्यक्ति ने इससे विवाह किया था, इस स्त्री ने इतने पतियों से विवाह किया था, तो वो भी उन्होंने प्रमाण दिए, तो वो भी अगली बार वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। आप में से किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं, और फिर उसके बाद दर्शन होंगे भगवान। माइक दीजिए। प्रवचन से अलग प्रश्न है भूकंप के बारे में, नेपाल के भूकंप के बारे में, हजारों लोगों की जानें गईं, अभी भी बहुत से लोग नीचे दबे हुए हैं। तो सबसे पहले तो उस भूकंप के लिए बड़े दुख की बात है कि इतने सारे लोग एक ही समय में इस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए, कुछ ही क्षण लगे। वहाँ के जो उस समय के लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि बस पृथ्वी हिली, धमाका हुआ, सब खत्म कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में, फिर दूसरा धमाका। तो पहली चीज़ ये बड़े दुख की बात है कि ऐसा ये दुर्घटना हुई है। शास्त्र की दृष्टि से इसे एक प्रकार की कष्ट माना जाता है। तीन प्रकार के कष्ट होते हैं जो हमें सहने पड़ते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। तो ये आदि दैविक चीज़ों में, कष्टों में आता है कि जहाँ इस तरह के भूकंप, बाढ़ आना इत्यादि होते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या इसका कर्म से कोई संबंध है? निश्चित है, निश्चित है। अगर कर्म से संबंध नहीं होता तो बड़े बड़े लोग मारे गए जो बड़े उम्र के थे, लेकिन एक 3 महीने का बच्चा 50 घंटे नीचे दबने के बाद भी, या 2-3 दिन नीचे दबने के बाद भी जीवित रहा, आपने देखा होगा, अगर आप लोग देखें, हमें किसी ने बताया, तो 3 महीने का बच्चा, इतना सा छोटा सा बच्चा है, उसके चित्र देख भेजा था किसी ने हमें, हम देख रहे थे, और जो आर्मी वालों ने हाथ में लिया तो दोनों हाथों में पूरा आ गया था, इतना सा बच्चा। तो वो बच्चा कई दिन नीचे रहने के बाद भी जीवित रहा। कई ऐसे लोग जीवित रहे जो ऐसे कई अभी उदाहरण आ रहे, 3-3 दिन नीचे थे वो जीवित रहे। पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। तो वे लोग सब जीवित रहे। तो ये प्रमाण क्या है? ये प्रमाण है कि अगर कर्म नहीं होता तो फिर सारे मारे जाते। ये बच्चे के बचने का क्या उपाय था, क्या कारण हो सकता है? तो निश्चित ये कर्म है, इसको संयुक्त कर्म कहते हैं। कर्म के नियमों में कई प्रकार के कर्मों के फलों को कहा जाता है, जैसे हम लोग जिसको भाग्य कहते हैं इत्यादि। तो कुछ होते हैं संयुक्त कर्म, कुछ होते हैं कि जो व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल पर मिलते हैं कर्म, और कुछ होते हैं संचित कर्म। तो संचित कर्म, और फिर इस जीवन में प्राप्त कर्म, और संयुक्त कर्म। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आपको संक्षेप में, क्योंकि प्रश्न आया है इसलिए बता रहे हैं। तो संयुक्त कर्म के अनुसार ऐसे सारे लोग जिनको एक प्रकार की मृत्यु प्राप्त होनी है, वो एक स्थान पर आते हैं, और फिर जैसे प्लेन क्रैश, या फिर समुद्र में डूब जाना जहाज का इत्यादि, या फिर भूकंप, तो एक प्रकार की मृत्यु को वो लोग प्राप्त होते हैं, तो उसको संयुक्त कर्म कहा जाता है। इन घटनाओं में आगे चलकर आप ये देखोगे कि कई लोग ऐसे थे जो केवल एक दिन पहले वहां पहुंचे थे और मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो केवल कुछ घंटे पहले वहां से चले गए थे, तो ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए ये निश्चित कर्मों से जुड़ा हुआ है। हाँ, कर्म के नियम बड़े जटिल हैं हमारे लिए समझना, और इसका बड़े विस्तार से वर्णन होना चाहिए, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर कि क्या इसको कर्म से जोड़ा जा सकता है, निश्चित ये कर्म से जुड़ा हुआ, ठीक है? यस, और कोई प्रश्न किसी के? हरे कृष्ण। द्रौपदी को कर्ण से शादी कर लेनी चाहिए थी, और फिर सारा महाभारत अलग हो जाता। वैसे द्रौपदी की भी बड़ी तीव्र इच्छा थी अर्जुन से विवाह करने की, और वो चाहती थी उनसे। और जहाँ पर वर्णाश्रम बहुत अच्छी तरह से चलता हो, वहाँ पर ये बात कहना गलत नहीं है। यस, भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभाग शह चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शह, कि चारों वर्णों की रचना मैंने की है, जो गुण और कर्म के आधार पर हैं, जन्म के आधार पर नहीं है। लेकिन जहाँ प्रमाणिक तौर से वर्णाश्रम चल रहा है गुण कर्म के आधार पर ही, तो उसका एक नियम ये भी है कि व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति में रहते हुए कार्य करे। नियत कर्म दिए जाते हैं, इनको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज या नियत कर्म कहते हैं। तो हर एक वर्ण के नियत कर्म हैं, वो उनको करते हैं। तो जो नियत कर्म शूद्रों के लिए हैं, वो नियत कर्म ब्राह्मणों के लिए नहीं है, और जो ब्राह्मणों के लिए हैं वो शूद्रों के लिए नहीं है। तो जहाँ पक्का वर्णाश्रम, आज की स्थिति नहीं, जहाँ अच्छा वर्णाश्रम चलते हैं वहाँ पर इसको माना जाता है। तो शूद्रों को अपना कार्य करना होता है, तभी समाज चलता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्म हो विगुण परधर्मो भयावह, कि अपने अपने धर्म को करना है। तो इसीलिए जो द्रौपदी ने कहा वो कोई गलत नहीं था, वो अपने धर्म को कर रही थी, और जो सूत पुत्र होने के कारण वो अपने धर्म को उसको करना चाहिए था। इसका एक और प्रमाण हम रामायण में देखते हैं, जहाँ एक शूद्र उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था, श्री रामचंद्र जी ने उसका गला काट दिया। केवल इसलिए नहीं कि वो शूद्र था, क्योंकि वो तपस्या कर रहा था सशरीर स्वर्ग जाने के लिए और वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध था। तो इस चीजों को पालन होता था। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, माइक दीजिए माता जी को। ऑन कीजिए माइक, ऑन करके दिया करो। ठीक है, बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का, कि जप करना अच्छा है या भगवान की लीलाओं को पढ़ना, भागवत भगवत गीता पढ़ना अच्छा है? आप लोगों को क्या लगता है, वोटिंग करें कौन सा अच्छा है कौन सा? जप का अर्थ होता है भगवान के नाम का उच्चारण, और जब हम जप करते हैं तो उसको सुनते हैं। तो भगवान के नाम को सुनना और भगवान की लीलाओं को सुनना एक ही समान है। भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों में, भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, एक है सब। तो चाहे हम नाम को सुने या लीलाओं को सुने, लेकिन फिर भी, हालांकि इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों जप हैं, लेकिन फिर भी जब हम भगवान का नाम लेते हैं, बड़ा ध्यान प्रयास करते हैं, तो उससे हृदय शुद्ध होता है। और फिर जब शुद्ध हृदय से भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो उस कथा के द्वारा हम भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर हृदय में जप करने की इच्छा नहीं है, लेकिन जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो जप करने की इच्छा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें कथा को भी सुनना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जप कीजिए ताकि कथा में रुचि बढ़े, और कथा सुनिए ताकि जप करने की प्रेरणा मिले। तो इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, मगर इस कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जप कर लेना चाहिए पहले, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारा मन वश में हो, और हमारा आकर्षण कृष्ण के प्रति बढ़े। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न किसी के? ठीक है, तो अभी भगवान के दर्शन करेंगे और कीर्तन होगा थोड़े समय, 5 मिनट, फिर आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक सूचना आपको देना चाहते हैं, महत्वपूर्ण सूचना। कल शाम को भी मंदिर में एक कार्यक्रम है, विशेष एक कथा होगी चंदन यात्रा पर। आप देख रहे हैं भगवान को चंदन लगाया जा रहा है, तो चंदन क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है, कुछ दिनों के लिए लगाया जाता है, तो इस सब पर कथा होगी। बंबई के चौपाटी मंदिर से हमारी संस्था के एक बहुत वरिष्ठ भक्त श्रीमान कृष्णानंद प्रभु वो यहाँ पर आ रहे हैं। वो पहले भी आ चुके हैं, वैसे कई कुछ एक दो साल पहले। बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत स्थानों पर प्रचार करते हैं। तो आप सबसे विनती है कि कल शाम को, केवल एक दिवस के लिए आ रहे हैं, कल शाम को उनका प्रवचन होगा, तो आप सब कृपया समय पर यहाँ पर आइए। ठीक 6:30 बजे आ जाइए तो समय पर कथा प्रारंभ हो सकेगी। तो कल वो चंदन यात्रा के महत्व को समझाएंगे। तो ऐसे भक्तों के मुख से, जैसे माता जी भी कह रहे थे कि हमें श्रवण करना चाहिए या नहीं, श्रवण तो करना चाहिए, और अगर हमें भगवान के भक्तों के मुख से श्रवण का अवसर मिले तो ज़रूर करना चाहिए। तो आप सबसे विनती करते हैं कि कल आप सब आइए, ताकि उनके मुख से हम ये चंदन यात्रा के महत्व को समझ सकें। हरे कृष्ण।